नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग का आग्रह किया। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बरी किया। सीबीआई का उच्च न्यायालय में अपील का फैसला। दिल्ली के सीएम श्री, स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सरकार के एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और दिल्ली की सड़कों पर लगभग 40 साल के बाद डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, व्यापार सुगम करने और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश में तेज गति से सुधार हो रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्तीय वर्ष पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही।
राष्ट्रीय बजट पॉलिसी रोडमैप होता है, इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं।
प्रधानमंत्री ने एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वेबिनार को केवल विचारों के आदान प्रदान का मंच नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे मंथन सत्र में बदलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई के उपयोग में विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित राइजिंग भारत समिट को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने एआई क्षेत्र को गंभीरता से लेने पर बल दिया। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा 21 अन्य लोगों को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है। सीबीआई आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति को बनाने, निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। इसी बीच सीबीआई ने अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह ईमानदार हैं और सच्चाई की जीत हुई है।
हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में सामने आए कथित शराब घोटाले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि जांचकर्ताओं के पास इस बात के सबूत हैं कि कथित शराब घोटाले के सिलसिले में कई मोबाइल फोन नष्ट किए गए थे।
साक्ष्य है कि इन्होंने शराब घोटाले में 173 फोन नष्ट किए। 173 फोन को नष्ट करना ये छोटा साक्ष्य नहीं होता है, और इसलिए आज सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक प्रवास कार्यक्रम के तहत उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजधानी में अब जमीनी स्तर पर वास्तविक विकास हो रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मुंडका, बवाना, नरेला, किराड़ी और सुल्तानपुर माजरा सहित ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी और सीवरेज परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। इस अवसर पर दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों के बीच जाकर सरकार के एक साल पूरा होने पर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी में विकास कार्यों की गति में तेजी आई है।
एक साल बेमिसाल हम नहीं कह रहे, दिल्ली की जनता कह रही है और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली का धन्यवाद करने के लिए दिल्ली के बीच जाने का निर्णय लिया और ये बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करता है तो दिल्ली की जनता के बीच जाकर बताना वो भी बहुत आवश्यकता थी। तो उन्होंने दिल्ली के विकास कार्यों की रफ्तार के कारण से आज दिल्ली के बीच गई, एक सुखद ऐसा दिल्ली की जनता को है, क्योंकि लगातार कार्य हो रहे हैं। नाली खरंजे जो 30 साल से लोग परेशान थे, आज वो परेशानी दिल्ली की जनता की समाप्त हो रही है।
दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार कक्षा 6, 9 और 11वीं में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने बताया कि इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 12 मार्च है। निदेशालय ने कहा कि प्रवेश केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दिल्ली के मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर चुके हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि इस बार दाखिले पूरी तरह से प्रवेश परीक्षा पर आधारित होंगे और स्कूल आवंटित होने के बाद किसी भी स्थिति में हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। निदेशालय ने बताया कि सीएम श्री स्कूलों में दाखिले की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दाखिले के लिए विद्यार्थी शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने एनसीईआरटी को सभी पुस्तकें वापस लेने और रद्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का न्यायिक प्रणाली का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है।
जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उस पर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति से उस किताब को बनवाने में, उस छात्रों को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे ये गलती ना हो, न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं और मैं मानता हूँ हमारी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की ही सुंदरता है, न्यायपालिका की आदर्श स्थान है, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थान है।
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय वाली कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रतियों को जब्त करने के साथ साथ इसके डिजिटल प्रारूपों को भी हटाने का आदेश दिया था। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना सशक्त और शिक्षित युवाओं के माध्यम से ही साकार हो सकती है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान के 97वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रगति का मुख्य ध्वजवाहक बताया। उपराष्ट्रपति ने महत्वाकांक्षी पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों को तैयार करने के प्रति भारतीय जनसंचार संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की।
I am sure that IIMC will continue its legacy as the country's premier mass communication school with these courses also. And IIMC has also set up campus incubation centers to foster media innovation and entrepreneurship beyond the classroom.
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्र के विकास में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने शिक्षा में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया।
टेक्नोलॉजी का मेजर यूज हो रहा है आज की मीडिया की दुनिया में। जहां पर भी आप देखेंगे सब जगह AI का उपयोग है, कई नए तरीके से टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं। और ऐसे टाइम में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कोई भी अपना खुद का चैनल बहुत कम संसाधन के साथ, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बना सकता है।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर भारतीय जनसंचार संस्थान परिसर में एक नए शैक्षणिक खंड और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर लगभग 40 साल बाद डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विशेष धरोहर पर्यटन के अंतर्गत डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह कदम विरासत और आधुनिकता को साथ लेकर चलने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण अनुकूल बसें अब दिल्ली की पहचान का हिस्सा बनेंगी। इस अवसर पर दिल्ली के कला तथा संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। यह बस सेवा सुबह 9 बजे से दिल्ली हाट, INA से विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और इंडिया गेट होते हुए वापस दिल्ली हाट INA पर आकर समाप्त होगी। दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं के अपमान के मामले में विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि समिति की रिपोर्ट का अभी इंतजार है और रिपोर्ट आने के बाद उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन समिति की सिफारिशों पर विचार विमर्श करेगा और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि अदम्य साहस की एक साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश राज के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष किया और अपनी अंतिम सांस तक वंदे मातरम का जाप करते रहे। उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन कांड से लेकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन तक उनके जीवन का हर पल देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाने की एक टीम ने विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन ठगी की कई वारदातों में शामिल रहे एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को आरोपी ने बैंक कर्मचारी बनकर KYC प्रक्रिया पूरा करने के बहाने से लगभग 6 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया। राजधानी में दिनभर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए AI, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग का आग्रह किया। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बरी किया। CBI का उच्च न्यायालय में अपील का फैसला। दिल्ली के CM श्री स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सरकार के एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और दिल्ली की सड़कों पर लगभग 40 साल बाद डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।